राधा माधव कुंज बिहारी। राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जना वल्लभ गिरीवरधारी, गोपी जना वल्लभ गिरीवरधारी, यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा वंचारी, यमुना तीरा वंचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी।
जय श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रमाय श्री श्री गौर निताय की शिल प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की निताय गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः।
श्रीमद्भागवतम स्कंद क्रमांक 4 अध्याय क्रमांक 30 श्लोक संख्या 11। यद्यूयं पितुरादेशं अग्रहिष्ट मुदान्विता, अथो वा उशति कीर्तिर् लोकाननु भविष्यति। यद्यूयं पितुरादेशं अग्रहिष्ट मुदान्विता, अथो वा उशति कीर्ति లోకానను భవిష్యతి. యద్యూయం పితురాదేశం అగ్రహిష్ట ముదాన్విత అథో వా ఉషతి కీర్తి లోకాననో భవిష్యతి. యద్యూయం పితురాదేశం అగ్రహిష్ట ముదాన్విత అథో వా ఉషతి కీర్తి లోకానను భవిష్యతి. యద్యూయం పితురాదేశం అగ్రహిష్ట ఉదాన్విత అథో వా ఉషతి కీర్తిర్ లోకానను భవిష్యతి. యద్యూయం పితురాదేశం అగ్రహిష్ట ముదాన్విత మాతయే. యద్యూయం పితురాదేశం అగ్రహిష్ట ముదాన్విత అథో వా ఉషతి కీర్తిర్ లోకానను భవిష్యతి. యద్ చూకి, యూయం తుమ్ లోగోనే, పితుః పితా కి ఆదేశం ఆజ్ఞా అగ్రహిష్ట శిరోధార్య కీ హై ముదాన్విత అత్యంత ప్రసన్నతాపూర్వక అథో అతః వహ తుమ్హారీ ఉషతి ఆకర్షణ కమనీయ కీర్తి మహిమా లోకాననూ సారే బ్రహ్మాండ భర్ మే భవిష్యతి సంభవ హో సకేగీ ఫైల్ జాయేగీ. అనువాద ఏవం తాత్పర్య కృష్ణ కృపా శ్రీమూర్తి అభయ చరణారవింద భక్తి వేదాంత స్వామి శిల ప్రభుపాద్ కి ద్వారా శిల ప్రభుపాద్ కి అనువాద్. చూకి తుమ్ లోగోనే అప్నే అంతఃకరణ సే ప్రసన్నతాపూర్వక్ అప్నే పితా కి ఆజ్ఞా అత్యంత శ్రద్ధాపూర్వక్ శిరోధార్య కీ హై ఔర్ ఉస్కా పాలన్ కియా హై అతః తుమ్హారే ఆకర్షక్ గుణ సంసార్ భర్ మే సరాహె జాయేంగే. తాత్పర్య, చూకి జీవ భగవాన్ కా భిన్నాంశ హై అతః ఉసే థోడీ సీ స్వతంత్రతా ప్రాప్త హై. కభీ కభీ అల్పబుద్ధి వ్యక్తి పూచ్తే హై కి యద్యపి సభీ ప్రాణి భగవాన్ కే అధీన్ మే హై కింతు మనుష్య కో కష్ట మే క్యో రఖా జాతా హై. అతి అల్ప స్వతంత్రతా హో ప్రాప్త హోనే సే జీవ చాహే పరమేశ్వర్ కి ఆజ్ఞా కా పాలన్ కరే అథవా ఉల్లంఘన్ కర్ దే. యది వహ ఆజ్ఞా పాలన్ కర్తా హై తో వహ సుఖీ రహతా హై ఔర్ యది నహీ కర్తా తో దుఖీ హోతా హై. అతః జీవ స్వయం సుఖ యా దుఃఖ కో జన్మ దేతా హై. పరమేశ్వర్ కిసి పర్ ఇన్హే లాదతే నహీ. పరమేశ్వర్ నే ప్రచేతాఓ కీ ప్రశంసా కీ క్యోంకి ఉన్హోనే అప్నే పితా కీ ఆజ్ఞా శ్రద్ధాపూర్వక్ శిరోధార్య కీ థీ. ఫలతా భగవాన్ నే రాజా ప్రాచీన్ బర్హిషత్ కే పుత్రో కో ఆశీర్వాద్ దియా. ఓం అజ్ఞాన తిమిరంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుఃన్మిళితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూప కదా మయ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. वंदेहम श्री गुरु श्रीयुता पदकमलम श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्री रूपं सागर जाता सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपरिष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नितिनामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानो सते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामो राम रामो हरे 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 कृष्ण सर्वप्रथम हम आप सभी भक्तों का इस प्रातःकालीन भागवत कक्षा में हार्दिक स्वागत कहते हैं और मैं श्रीमान सार्वभौम प्रभु के आशीर्वादों की कामना करता हूँ। प्रभु जी ऐसे बैठे हैं कि जो भागवत कथा देता है उसे समझ में नहीं आता प्रभु जी है कि नहीं, तो प्रभु जी के आशीर्वाद और कृपाओं की कामना करता हूँ। उन्हीं के साथ साथ श्रीमान राधेश्याम प्रभु के कृपा आशीर्वाद का अभिलाषी। प्रभु जी के कारण हमें ये भक्ति मार्ग मिला है, यही प्रार्थना करते कि प्रभु जी के मार्गदर्शन का पूरा पूरा लाभ देते हुए अपने जीवन का सार्थक करें। और आप सभी वैष्णवों के कृपा आशीर्वादों की कामना करता हूँ। जो कुछ आपको प्रसन्न करने के लिए प्रयास कर रहे हैं आपके अगर आशीर्वाद प्राप्त है तो ही हम कर पाएंगे। यद्यूजं पितुरादेशं अग्रहिष्टमुदान्विता अथो व उशति कीर्तिर् लोकाननु भविष्यति। चूंकि तुम लोगों ने अपने अंतकरण से प्रसन्नता पूर्वक अपने पिता की आज्ञा अत्यंत श्रद्धापूर्वक शिरोधार्य की है और उसका पालन किया है, अतः तुम्हारे आकर्षक गुण संसार भर में सराहे जाएंगे। तो यहाँ पर एक गुणगान हो रहा है प्रचिताओं का, उन्होंने अपने पिता के आदेश को शिरोधार्य स्वीकार किया। और तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं जैसे पुत्र ने पिता के आदेशों का पालन करना आवश्यक है, उसी प्रकार एक भक्त ने या एक जीव ने एक बद्ध जीव ने भगवान के आदेशों को शिरोधार्य करना बहुत आवश्यक है। तो हम विचार कर रहे थे कि जब भगवान ही अपने पिता का आदेश शिरोधार्य करते हैं, इस प्रसंग के बारे में हम थोड़ा चर्चा करेंगे। और उससे कुछ हमें प्रेरणा और शिक्षा प्राप्त करेंगे। तो ये प्रसंग आता है श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में, जब भगवान श्री राम अपने पिता के आदेश को शिरोधार्य करते हैं। यह अयोध्या कांड का वर्णन है। सर्वप्रथम हम भगवान रामचंद्र को थोड़ा प्रार्थना करते हैं, मेरे पीछे पीछे कह सकते हैं, श्री रामचंद्र चरणौ मनसा स्मरामि, श्री रामचंद्र चरणौ वचसा गृणामि, श्री रामचंद्र चरणौ शिरसा नमामि, श्री रामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये, तो ये अभी प्रसंग ऐसा है कि श्री राम का राज्याभिषेक होने ही वाला है, उन्हें युवराज पद प्राप्त होने ही वाला है, और इसलिए अपनी कृतज्ञता प्रकट करने हेतु प्रभु रामचंद्र भगवान बड़े खुश हैं और सभी उनके सुहृदों के साथ उनका वार्तालाप हो रहा है, चर्चा हो रही है। इतने में ही सुमंत्र वहां पर आते हैं और सुमंत्र उनको आमंत्रित करते हैं कैकेयी के गृह में, कक्ष में, भवन में। कहते हैं कि वहां पे दशरथ महाराज आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो वर्णन आता है कि जब भगवान रामचंद्र अपने सुहृदों के साथ राजमार्ग पर रथ पर बैठ के जा रहे थे तो सारा नगर ध्वजा और पताकाओं से सुशोभित हो रहा था। चारों ओर बहुमूल्य अगुरु नामक धूप जलाया जा रहा था और सब ओर असंख्य मनुष्यों की भीड़ दिखाई दे रही थी। वह राजमार्ग श्वेत बादलों के समान उज्जवल भव्य भवनों से सुशोभित हो रहा था। अच्छी श्रेणी के चंदन, अगुरु नामक धूप, उत्तम गंध द्रव्यों, अलसी या सन आदि के रेशों से बने हुए कपड़ों तथा रेशमी वस्त्रों के ढेर, अनबिंधे मोती और उत्तमोत्तम स्फटिक रत्न उस विस्तृत एवं उत्तम राजमार्ग की शोभा बढ़े रहती। वह नाना प्रकार के पुष्पों तथा भांति भांति के भक्ष्य पदार्थों से भरा हुआ था। उसके चौराहों की दधि, अक्षत, हविष्य, लावा, धूप, अगुरु, चंदन, नाना प्रकार के पुष्पहार और गंधर्व और गंध द्रव्यों से सदा पूजा की जाती थी। राजा दशरथ का भवन मेघ समूहों के समान शोभा पाने वाले, सुंदर अनेक रूप रंग वाले कैलाश शिखर के समान उज्जवल प्रासाद शिखरों से सुशोभित था। उसमें रत्नों की जाली से विभूषित तथा विमानाकार क्रीड़ा गृह बनाए थे जो अपनी श्वेत आभा से प्रकाशित होते थे। तो ये सब प्रसन्न आह्लाददायक परिस्थिति में रामचंद्र अभी कैकेयी के गृह में प्रवेश कर ही रहे हैं। तो वो क्या देखते हैं, महल में अपने पिता एवं राजा दशरथ बैठे हैं एक बहुत सुंदर आसन पर कैकेयी के साथ, मगर उनका तेज चेहरे पे कुछ भी नहीं, चेहरा फीका पड़ गया है, चेहरा शुष्क सा हो गया। जब प्रभु रामचंद्र अपने पिता को ऐसा देखते हैं, वे कहते हैं, मेरे जीवन में ऐसा कभी मेरे पिता को देखा नहीं, अगर मेरे पिता अप्रसन्न भी रहे तो मैं उनके समक्ष चला जाऊं तो प्रसन्न हो जाते थे, उन्होंने कभी अपने दुख या कष्ट को मेरे सामने प्रकट किया नहीं। वो देख रहे हैं कि जैसे समुद्र में तरंग मालाओं से समुद्र शोभित हो जाता है, उसी प्रकार उनके पिता दुखी हो गए हैं। जैसे सूर्य को राहू ने ग्रस लिया है या किसी महर्षि ने झूठ बोल दिया तो उस महर्षि को क्या ताप होगा, वेदना होगी, उस प्रकार का दुख अपने पिता के चेहरों पे मंडरा रहा है। ये सब देखकर श्रीराम भी पूर्णिमा के समुद्र में जैसे चंद्र के कारण प्रक्षोभ होता है, उसके द्वारा प्रक्षोभित हुए, बड़े दुखी हुए और अपने मां को कहने लगे कि क्या मैंने कुछ गलत किया है। तो उनकी मां यानी मां कैकेयी को कह रहे हो, क्या मैंने कुछ गलत किया है, मेरा कुछ अपराध हुआ है कि मेरे पिता आज इतने दुखी है, मायूस है, क्या है इसका कारण। और अलग अलग प्रश्न करते रहते हैं कि यहां तक आकर रुकते हैं कि वो भी यह भी कह डालते हैं, कच्चित्ते परुषम किंचित अभिमानात पिता मम उक्तो भवत्या रोषेण एनास्य लुलितम मनम। कहीं तुमने तो अभिमान या रोष के कारण मेरे पिताजी से कोई कठोर बात नहीं कर डाली जिससे इनका मन दुखी हो गया है। और फिर कैके कहने लगते हैं, राम महाराज कुपित नहीं है या इन्हें कोई कष्ट हुआ है, इनका सबसे बड़ा आसक्ति आप ही है और जिसके कारण अभी आज उनके आसक्ति के जीवन में बाधा पहुंचने वाली है, इसलिए वो ऐसे नाराज हुए हैं। मैं उन आपको कुछ बात कहना चाहती हूं, मगर उसके लिए वो कहते हैं कंडीशन अप्लाई। अगर ये सब दो चार चीजें होने वाली है तभी मैं आपसे बात कहूंगी। और वो कहते हैं, यदि राजा ने जो बातें मुझे कही वो आपके कानों में प्रवेश करने के बाद उसका अगर आप पालन नहीं करेंगे तो मैं यह बात आपको नहीं कहूंगी, ठीक है। अगर आप में आपके पिता की आज्ञा का पालन करने का पूरा श्रद्धा, विश्वास और आज्ञाकारिता है तो ही मैं ये बात आपको कहूंगी। और ये शब्द जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम सुनते हैं तो उनका हृदय विदीर्ण हो जाता है। वो कहते हैं, अहो धिक नार्हसे देवी वक्तुम मामी दृशम वचः अहम ही वचनाद राज्ञा पतेयम अपि पावके। वो कहते हैं, अहो धिक्कार है देवी, तुम्हें मेरे प्रति ऐसी बात मुझसे अपने मुंह से निकालनी नहीं चाहिए। मैं महाराज के कहने से आग में कूद सकता हूं, तीव्र विष का भी भक्षण कर सकता हूं और समुद्र में भी गिर सकता हूं। महाराज मेरे गुरु, पिता और हितेशी है, मैं इनकी आज्ञा पाकर क्या नहीं कर सकता। इसीलिए देवी, राजा को जो अभिष्ट है वह बात मुझे बताओ, मैं प्रतिज्ञा करता हूं उसे पूर्ण करूंगा। और अंतिमता अपने क्लेश को बोल ही देते हैं, राम दो प्रकार की बातें नहीं करता। और फिर अहम सभी को पता है, कई क्यों उनको बोलने लगती है कि बहुत वर्ष पहले देवासुर संग्राम में आपके पिताजी घायल हो गए थे, उस दिन पूरी रात्रि को मैंने जागकर उनकी अच्छे से सेवा की, तब उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया कि आप मुझे दो वर मांगिए और मैं वो पूरे करूंगा, और आज मैंने वो दो वर मांग ली। क्या है वो दो वर? जो पूरा वो राज दरबार में भगवान प्रवेश कर रहे थे तो पूरे उनके राज्याभिषेक की तैयारी वहां पर हुई थी, उसका वर्णन हमने अभी देखा। तो मां कैकेयी कहते हैं, वो जो सब अभिषेक की सामग्री है ना, उससे अभिषेक आपका नहीं होगा, भरत का होगा। यह मेरा पहला वर है। और दूसरा वर है कि आप 14 वर्षों के लिए जटा और शीर धारण करके वनवास में चली। बस इतनी सी ही बात है, मैंने दशरथ महाराज को कह डाली। और देखो ये कैसे तड़प रहे हैं, कुछ बोल ही नहीं रहे। वर्णन आता है, इतिव तस्याम परुषम वदंत्याम न चैव राम प्रविवेश शोकम प्रविव्यत्य चापि महानुभावो राजा च पुत्र व्यसनाभितप्त। कहते हैं, कैकेयी के इस प्रकार के कठोर वचन कहने पर भी भगवान रामचंद्र के हृदय में शोक, दुख या संताप इसने प्रवेश तक नहीं किया। जय श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रमाय, श्री श्री गौर निताय, शिल प्रभुपाद की। प्रभु रामचंद्र कहते हैं, मां बहुत अच्छा, ऐसा ही हो, मैं महाराज की प्रतिज्ञा का पालन अवश्य करूंगा। मुझे यह दुख हो रहा है कि महाराज ने क्यों नहीं कहा ये मुझे, आप बता रहे तो कोई समस्या नहीं है, महाराज बताते अच्छे से आनंद से बताते, उनको कष्ट करने की क्या आवश्यकता है। मुझे इस चीज से दुख हो रहा है कि मुझे महाराज को बताने हुए संकोच हो रहा है, महाराज ने संकोच क्यों किया, कोई आवश्यकता नहीं थी, दुख क्यों कर रहे हैं, बड़े आनंद से बता सकते थे। फिर वो कहते हैं, अहम ही सीताम राज्यम च प्राणानिष्ठान धनानि च रुष्टो भ्रात्रे स्वयं दद्या भर्ता या प्रचोदित। वो कहते हैं, हे माता, अरे राजा की बात तो छोड़ दीजिए, अगर आप भी मुझे कहते ना कि भरत के लिए आप राज्य का, सीता का, अपने प्राणों का और अपनी संपत्ति का त्याग कर दे, तो भी मैं प्रसन्नता से कर देता था। और वो कहने लगे, क्यों आपने ये सब महाराज को बताया, मुझे बुला के बोल देते थे, वहीं पे समस्या हल हो जाती थी, अभी महाराज इतने कष्ट में हैं, दुख में हैं, ये सब समस्या आती ही नहीं थी। बाद में वो कहते हैं, आज ही महाराज की आज्ञा से दूतों को शीघ्रगामी घोड़ों के ऊपर बिठाइए और जो भरत मामा के घर पर बैठे हैं उनको ये संदेशा दीजिए, और आज ही मैं दंडकारण्य में 14 वर्षों के लिए तुरंत जाने वाला हूं। जब ये कहीं कहीं सुनती है तो उनके पेट में तो आनंद के लड्डू फूटते हैं। वो कहते हैं, नरश्रेष्ठ, राजा लज्जित होने के कारण जो स्वयं तुमसे नहीं कहते हैं इसका ज्यादा विचार मत कीजिए, ठीक है। श्री राम, तुम जब तक अत्यंत उतावली के साथ इस नगर से वन को नहीं चले जाते तब तक राजा ना स्नान करेंगे ना भोजन करेंगे। जैसा ही कैके ऐसा कहती है तो ठीक कहते दशरथ महाराज जो दुख से सिर केवल आंसू बहा रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, उनके ओठों से शब्द बाहर नहीं आ रहे हैं, वहीं पर अपने आसन से नीचे जमीन पर धराशायी हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। प्रभु रामचंद्र उनको उठा के अच्छे से बिठाते हैं और वो कैके से कहते हैं, नाहम अर्थ परो देवी लोकमा वस्तु मुत्सहे विद्धि मामृषम भिस्तुल्यम विमलम धर्ममास्तितम। वो कहते हैं, देवी ऐसा मत सोचिए कि ये सब धन, ये सब संपत्ति, ये सब राज, ये देखने के कारण मेरे मन में विचलन आएगा, मुझे तो अच्छा लगता है ऋषियों के साथ रहना और तपस्या करना, इसलिए मुझे आपने जो कुछ बोला है इससे लेश मात्र दुख नहीं हुआ है। दूसरा वो कहते हैं, ननूनम मई कई कई किंचित आशम ससे गुणान यद राजान राजानम वोचसस्तम ममेश्वर तरासती। वो कहते हैं, कई कई माता, मेरे लिए तो आप दशरथ महाराज के समान हैं, मगर दुख इस चीज का होता है कि आपने ये चीज मुझे नहीं कही, जिसके कारण आपको ये चीज मुझे कहने के लिए आशंका हुई, इसका अर्थ है आप मेरे में कुछ गुण देखते ही नहीं। ऐसा वर्णन आता है, वे वन में राज्य छोड़ने के लिए इतने उतावले हो गए, इतने उत्साह से जाने लगे कि जैसा कोई जीवन मुक्त महात्मा अपने जीवन में कोई विकार का अनुभव करता नहीं है। और वो बोले, कैकेयी को प्रणाम किए, दशरथ महाराज को प्रणाम किए और बोले, अभी तुरंत कौसल्या माता को बता देता हूं, सीता को बता देता हूं, दोनों को मना लेता हूं और बाकी आप मेरे वन की जाने की तैयारी चालू ही कर दीजिए। तो बहुत सुंदर चीज है कि अभी महल से जब बाहर जा रहे हैं तो प्रभु रामचंद्र क्या कर रहे हैं। वर्णन आता है जो लोग उनके ऊपर छत्र लेके आने ही वाले थे उनको कह रहे थे अभी इस छत्र की आवश्यकता नहीं है। जो लोग चवर चामर उनके दोनों बाजू में डुला रहे थे वो कह रहे थे इसकी भी आवश्यकता नहीं है। और जो लोग उनके स्नेही उनके पीछे पीछे चल रहे थे वो कह रहे थे आप भी मेरे पास मेरे साथ मेरे पीछे मत आइए। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों कह रहे और इसलिए उनके चेहरे उतर गए। तो प्रभु रामचंद्र को दुख होने लगा कि मैंने इनको मेरे से विलग कर दिया इसलिए ये दुखी है। उसका दुख वो सहन नहीं कर पाए मगर उस दुख को भी मन में काबू कर दिया और बड़े प्रसन्न चेहरे से मां कौशल्या के राजमहल में प्रवेश करने लगी। वर्णन आता है कि मन में तो दुख है एक भौतिक स्तर पे मगर जो लोग मुझसे प्रेम करते हैं जो लोग मेरा हित चाहते हैं वो अगर मेरे चेहरे पे दुख को रंच मात्र भी देख ले तो उनको पीड़ा हो सकती है उनके प्राणों को कष्ट हो सकते हैं। इसलिए प्रभु रामचंद्र ने सारा दुख मन में ही पी लिया और जो आभा जो उत्साह उनके चेहरे पे महल में प्रवेश करते समय था वही आभा वही उत्साह के साथ कौशल्या के महल में प्रवेश करने लगे। जैसे ही प्रभु रामचंद्र कौशल्या के महल में जाने लगते हैं तो वहां पे बहुत सारे कक्ष होते हैं। तो आजकल हम जाते हैं तो लोगों का कैसा रहता है घर का दरवाजा पहले ही रहता है लॉक खोलो तो खुल गया। मगर कौशल्या का जो महल है उसका वर्णन आता है उनमें तीन अलग अलग कक्ष होते हैं। पहला कक्ष हो गया तो पहला एक कुछ जैसा मान लीजिए एक परिसर है फिर दूसरा कक्ष फिर तीसरा कक्ष और तीसरे कक्ष में कौशल्या बैठी है। तो पहले और दूसरे कक्ष में ही उनकी सेविकाएं जब प्रभु रामचंद्र को बड़े उत्साह से देखते हैं तो बड़े आनंद विभोर होके मां कौशल्या के पास जाते हैं और बोलते हैं आपके पुत्र आ गए। और कौशल्या तब क्या कर रही सुबह का वो समय था पहली रात्रि को पूरा रात भर जाग के भगवान विष्णु की आराधना की है प्रार्थना की है कि मेरे पुत्र का राज्याभिषेक अच्छा हो। इसके लिए कौशल्या बड़ी क्षीण हो गई है उनके शरीर में कुछ ताकत नहीं है और अभी सुबह उन्होंने भगवान विष्णु की पूजा सामग्री की तैयारी शुरू कर दी। ऐसा वर्णन आता है जैसे प्रभु रामचंद्र वहां पर आते हैं तो तुरंत कौशल्या मां उनको बड़े कस से अपने छाती को आलिंगन कराती है और उनके सर का सुंगन करती है और वे कहती है कि प्रभु अर्थात मां है तो प्रभु तो नहीं कहती श्री राम कहती है श्री राम आइए बैठिए विराजी और उनके लिए भोजन इत्यादि की सामग्री रहती है। वहां पे आसन भी बहुत ऐश्वर्यशाली रहता है। जब प्रभु रामचंद्र वो आसन और भोजन की तैयारी देखते हैं और वो सब यज्ञ की तैयारी मां कौशल्या की चालू है मगर अबे समय तो ज्यादा नहीं है न्यूज तुरंत देना है कि नहीं तो हंसते हैं सिर्फ और वो जो आसन है उस आसन को केवल स्पर्श करके सर को लगाते हैं और अपने हाथों की अंजलि सामने करते हुए कौशल्या को बड़े विनय भाव से कुछ कहने की मुद्रा प्रकट करते हैं और फिर मां कौशल्या को कहते हैं कि हे कौशल्या माता आपके लिए जो मैं कथा या बातमी या खबर या समाचार बताने वाला हूं ये सुन के शायद आप दुखी हो सकते हैं मगर आपको बताना चाहता हूं कि हमारे जो पिताजी है हमारे जो राजा है उन्होंने मुझे एक विशेष आदेश दिया है। जो अभिषेक होने वाला है वो मेरा नहीं होगा वो भरत राजा बनेंगे और मुझे पिताजी ने 14 वर्ष के लिए एक विशेष उपहार दिया है और क्या है वो उपहार मुझे वन में जाना है। इसलिए आप इतना सारा भोजन की सामग्री की आवश्यकता नहीं है या ऐश्वर्यशाली जी आसन की आवश्यकता नहीं आप तो बस एक कुशा घास का भी आसन मुझे दे दे तो वो भी अभी पर्याप्त है। तो वर्णन आता है यह बात सुन के जैसे फरसे से, फरसा यानी परशु, परशुराम का जो परशु है, फरसे से अगर किसी शाल वृक्ष की शाखा को कोई काट दे, उस प्रकार से दुखी होके कौसल्या वहीं पर जमीन पर धराशायी हो गई। जैसे वर्णन आता है कि कोई देवांगना स्वर्ग लोक से पृथ्वी पर आ गिरी हो। कुछ समय के पश्चात वो फिर से होश में आती है और उसको, उनको प्रभु रामचंद्र ही स्वयं उठाते हैं। उनके साड़ी को जो रेशमी वस्त्रों से बनी है, उनकी धूली पोछते हैं और कौसल्या कहने लगती है कि ये सब सुनने के बाद मुझे तो ऐसा लगता है कि अच्छा होता कि मुझे कभी जीवन में कोई पुत्र ही नहीं होता। आज ये सुनकर मुझे जो दुख हो रहा है, वो दुख से तो वो दुख मैं शायद पूरा जीवन सहन कर देती। हालांकि मैं राजा की सबसे बड़ी रानी हूं, मगर उसका कुछ सम्मान या सुविधा मुझे जीवन में मिला नहीं। मेरी इच्छा थी कि आप राजा बनके शायद मुझे प्राप्त होगा, वो भी नष्ट हो गया। फिर वो कहती है, ये सब सुनने के बाद भी मेरा हृदय विदीर्ण नहीं होता, मैं मृत्यु को प्राप्त नहीं होती, अवश्य मेरा हृदय पत्थर से बना है। तो प्रसंग तो ये बहुत बड़ा है, हम जितना दो चार चर्चा कर पाएंगे उतना ही करेंगे। तो तब ये सब घटनाएं घट रही है, तो सब प्रसंगों में प्रभु रामचंद्र के साथ एक साइलेंट ऑब्जर्वर है, और वो कौन है? लक्ष्मण। पूरा क्रोध, राग का ज्वालामुखी है ना, राग यानी मराठी राग हो गई, क्रोध का ज्वालामुखी जो है, वो क्रोध का ज्वालामुखी अपने हृदय में समा के रखे है। मर्यादा पुरुषोत्तम के छोटे भाई है, मर्यादा का उल्लंघन नहीं कर सकते, मगर अभी तो कम से कम माता के पास है, अभी तो दशरथ महाराज के सामने नहीं है कि नहीं। वो कहते हैं, मैं रघुनाथ जी का ऐसा कोई अपराध नहीं देखता जिसके लिए दशरथ महाराज ऐसी शिक्षा उनको देते हैं। वो कहते हैं, जब तक कोई भी मनुष्य आपके वनवास की बात को नहीं जानता है, आप मेरी सहायता से इस राजपद की डोर संभाल लीजिए और बाकी का काम मेरे ऊपर छोड़िए। वो कहते हैं, जो जो भरत का पक्ष लेगा अथवा केवल उनकी हित भी चाहेगा, उन सबका मैं वध कर डालूंगा, क्योंकि जो कोमल या नम्र होता है उसका सभी तिरस्कार करते हैं। तो कहते हैं, आप कोमल मत रहिए, नम्र मत रहिए, एक्शन में आइए। फिर वे कहते हैं, यदि कैकेयी के शब्दों से अगर दशरथ महाराज का माथा सटक गया, गुस्सा हो गए, अगर वो युद्ध में खड़े रहे तो उनको भी बंदी बना देंगे। फिर थोड़े क्षण रुकते हैं, बंदी क्यों बनाने का, उनका भी वध कर डालेंगे, उसमें कुछ गलत नहीं। तो ये छोटे भाई और माता का अशोक विलाप देखते हुए रामचंद्र कुछ बोलने लगते हैं। वो कहते हैं, माता, मैं तुम्हारे चरणों में सिर झुकाकर आपको प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं, आप जो चाहे वो सब कर सकता हूं, मगर अपने पिता की आज्ञा का पालन न करना, ये मेरे से होगा नहीं। वे कहते हैं, जमदग्नि के पुत्र जो परशुराम हैं, उनको जमदग्नि ने कहा दिया कि अपनी माता रेणुका का परशु से वध कर डालो, और उन्होंने वो कर डाला। तो कहते हैं कि पिता का आज्ञा अगर वो धर्म के साथ साथ चल रहा है तो वो कभी भी त्यागना नहीं चाहिए। और फिर लक्ष्मण को कहते हो कि आपने ये सब कहा, सिद्ध हो गया, मुझे पूरा विश्वास है कि आपका मेरे लिए प्रेम बड़ा अनुमन है, अनुपम है और महान है। और मां जो अभी दुखी है, ये मत सोचिए कि मैं राज सिंहासन पर बैठ नहीं रहा इसलिए वो दुखी है। तो किसके कारण वो दुखी है? वो कहते हैं, सत्य क्या है और मन का निग्रह कैसा करना चाहिए, ये जो मेरा हेतु है वो अभी तक मेरी माँ को मैं समझा नहीं पाया हूं, इसलिए वे दुखी है। तो इसलिए आप ये सब विचार को छोड़ दीजिए। और बहुत सारा बताते हैं माता को धर्म के बारे में, फिर भी माता सुनती ही नहीं। तब उनके हृदय में बड़ा वेदना होने लगती है प्रभु रामचंद्र के, कि अरे इतने अच्छे से अपनी माँ और भाई को धर्म के बारे में बताना चाहता हूं और ये लोग हैं कि मेरे प्रेमवश क्या उचित है क्या अनुचित है ये समझ ही नहीं रहे। उनकी माँ कहती है, बेटा धर्म और सौहार्द के नाते जैसे पिता तुम्हारे लिए आदरणीय गुरुजन है वैसी मैं भी हूं। मैं तुम्हें वन जाने की आज्ञा नहीं दे सकती, मुझ दुखिया को छोड़कर तुम कहीं नहीं जा सकते। तो फिर प्रभु रामचंद्र का वर्णन आता है, अगर किसी विशाल गजराज को हाथी को अगर अंधकूप में डाला जाए और लोग जलती हुए लाठियों से उसे वो जलती हुई आग से उसे दुख पहुंचा है, वो दुख प्रभु रामचंद्र के मन में आने लगा अपने मां और लक्ष्मण के वचन सुन के। और अब जो प्रभु रामचंद्र कहते हैं वो बड़ा सुनने लायक है। वो कहते हैं, और यहां पे वर्णन आता है, ये केवल राम ही कह सकते हैं। वो कहते हैं, लक्ष्मण मैं जानता हूं तुम सदा ही मुझ में भक्ति रखते हो और तुम्हारा पराक्रम कितना महान है, तथापि तुम मेरे अभिप्राय की ओर ध्यान न देकर माताजी के साथ स्वयं भी मुझे पीड़ा दे रहे हो, इस तरह मुझे अत्यंत दुख में डाल रहे हो, कृपा करके मुझे दुख में मत डालो। और बहुत अच्छा तत्वज्ञान श्री रामचंद्र भगवान यहां पे बताते हैं, धर्मार्थ कामा खलु जीव लोके समीक्षिता धर्म फलोदयेषु, ये तत्र सर्वे स्युरस संशयम् मे भार्येव वश्या भीमता सुपुत्रा। वो कहते हैं, इस जीव जगत में जिसमें चार पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, वे कहते हैं अगर धर्म का हम पालन नहीं करें तो कुछ अर्थ नहीं है। वो अर्थ ये अर्थ नहीं मगर मीनिंग के हिसाब से बोल रहे कि धर्म नहीं कर रहे तो आपका जीवन व्यर्थ है। और वो बताते हैं, धर्म करेंगे तो आपको धर्म करने के लिए प्रेरणा मिलेगी, धर्म करेंगे तो आपको अर्थ मिलेगा, और धर्म करेंगे तो आपकी इंद्रिय तृप्ति भी होगी। और वे उदाहरण देते हैं एक पत्नी का। वो कहते हैं, अगर एक धर्मवती पत्नी है तो एक गृहस्थ के लिए वो बहुत बड़ा लाभ है। क्यों? क्योंकि धर्म का पालन करने वाली अगर पत्नी है तो पति को अतिथि सत्कार करने में वो सहायता करेगी। अगर धर्म की पालन करने वाली पत्नी है तो वो धर्म के अनुसार अपने पति के इंद्रियों को भी आनंद देगी, उससे उनको इंद्रिय तृप्ति देगी, और उसके द्वारा एक पुत्र के माध्यम से वो अपने पति को अर्थ भी देगी। वो कहते हैं, धर्म जैसे गृहस्थ जीवन में धर्मशाली धर्मवती पत्नी की आवश्यकता है, उसी प्रकार एक मनुष्य के लिए धर्म की आवश्यकता। वो कहते हैं, जिस कर्म में अगर धर्म नहीं है वो कर्म कभी नहीं करना चाहिए, जिससे धर्म की सिद्धि हो वही कर्म शुरू करना चाहिए। वे कहते हैं, अगर कोई केवल अर्थपरायण है, पैसा चाहिए पैसा चाहिए, धन चाहिए धन चाहिए, कहते उसका जीवन बेकार है। वो कहते हैं, उस व्यक्ति का सब लोकों में निंदा ही किया जाए। और वो कहते हैं, धर्म के विरुद्ध अगर कोई इंद्रिय तृप्ति करता है तो ये प्रशंसा नहीं निंदा है। और बाद में वो कहते हैं, महाराज हम लोगों के गुरु है, राजा है और पिता है, इसलिए हमने उनका आदर करना चाहिए। फिर वे कहते हैं, अगर वो हमारे जो पिताजी है वे अगर क्रोध से भी कुछ कह दे हर्ष से भी वो कुछ कह दे या कोई बोलेगा कि कैकेयी के साथ उनका काम वासना के कारण उनकी बुद्धि मारी गई थी इसलिए उन्होंने ऐसा कुछ कह दिया, ये भी अगर समझ ले कि ये सत्य है, फिर भी वो कहते हैं एक राजा के रूप में, एक गुरु के रूप में, एक पति के रूप में और एक पिता के रूप में उन्होंने अपना धर्म त्यागा नहीं है, इसलिए हमने धर्म का पालन करना चाहिए। और अपनी मां को कहने लगते हैं आप अभी फिर से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना चालू करिए, मगर सिर्फ आपका जो उद्देश्य है वो बदलना है। अभी तक कर रहे थे मेरे अभिषेक के लिए, अभी प्रार्थना कीजिए भगवान को कि अभी मैं 14 वर्षों के लिए वनवास जा रहा हूं, तो भगवान को प्रार्थना कीजिए कि मेरा अच्छे से रक्षण हो जाए और मैं अच्छी भावना में धर्म का पालन करूं, गुरुओं की और ऋषियों की सेवा करूं और अपने स्वार्थ के लिए एक क्षण भी जीवित जीवन व्यतीत न करूं, ये मुझे आशीर्वाद दीजिए। तो कृपा करके ये आशीर्वाद देना चालू कीजिए। और ये जो 21वां अध्याय है इसमें रामायण में इसे सर्ग कहते हैं, तो उसका ये जो अंतिम 2 श्लोक है उसमें बहुत अच्छे से वो बताते हैं कि उनका भाव क्या है, उनका हृदय के विचार क्या है। वो कहते हैं यशो ह्ययम केवल राज्य कारणाम न पृष्ठ तक कर तुम अलम महोदयम अधीर्घ काले न तु देवी जीविते ऋणे वरा मध्य महिम अधर्मत। वे कहते हैं केवल धर्महीन राज्य के लिए मैं महान फलदायक धर्म पालन रूप सुयश को पीछे नहीं ढकेल सकता। मां जीवन अधिक काल तक नहीं रहने वाला, इसके लिए मैं आज अधर्म पूर्वक इस तुच्छ पृथ्वी का राज्य लेना नहीं चाहता। प्रभु श्री रामचंद्र भगवान की। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि भक्ति में आने के बाद ये बहुत आवश्यक है कि हम अपनी बुद्धि जागृत रखते हुए भक्ति करें। केवल जीवन में कुछ संकट आ जाए, कुछ दुख हो जाए या हमारे आजू बाजू में कुछ संदेह कुछ शंका का वातावरण हो जाए उसमें हमने बह नहीं जाना चाहिए। उसके कारण हमने धर्म क्या है, शास्त्र क्या है या गुरु साधु शास्त्र जो है इसका जो तत्व जो है इसमें खुद को डुबो लेना चाहिए, ये हमारे लिए आवश्यक है। मन के स्तर पे बुद्धि के स्तर पे अगर तर्क वितर्क करेंगे और जो हमारे अधिकार के परे है उसके विषयों में अगर हम चर्चा करते रहेंगे तो उसमें हताशता नैराश्य श्रद्धा का नाश इसके सिवा अपने हाथ में कुछ आने वाला नहीं। तो इसलिए आवश्यक है कि हम धर्म क्या है ये गुरु साधु और शास्त्र इनसे समझे और उसका पालन करें। श्रील प्रभुपाद जी ने जो हमें ये भक्ति पद दिया है, श्रील प्रभुपाद जी ने जो हमें ये भगवद गीता श्रीमद् भागवतम दिया है, परम पूज्य भक्ति विद्यापूर्ण स्वामी महाराज कहते हैं कि ये इतना प्रचुर मात्रा में श्रील प्रभुपाद जी ने अपने उपदेश शास्त्रों के द्वारा हमें दिए हैं कि एक व्यक्ति को भगवत धाम जाने के लिए जितनी आवश्यकता है उससे ये 20 गुना ज्यादा है केवल श्रील प्रभुपाद जी के ग्रंथ। ठीक है, तो इसीलिए ये बहुत आवश्यक है कि ग्रंथ पढ़ना भी चाहे, मगर केवल ग्रंथ पढ़ के चाहे कोई अच्छा बोल भी दे, है कि नहीं, ग्रंथ पढ़ के बुद्धि के स्तर पे उसके ऊपर चरवण करके बड़ा कथा करना भी बड़ा आश्चर्य की बात नहीं है, मगर ये ग्रंथ के उपदेश और जिस हेतु के लिए श्रील प्रभुपाद जी ने इस संस्था का निर्माण किया है वो है हमारे चित्त की शुद्धि, और वो चित्त की शुद्धि हम केवल वैष्णव के संग में ही रह के प्राप्त कर सकते हैं। अगर हमारे मन में संदेह है, प्रश्न है, तो हमारे जीवन में कुछ तो ऐसे आदर्श भक्त होने चाहिए कि जिनके पास जाके हम अपना हृदय खोलें। और उनसे उचित मार्गदर्शन प्राप्त करें, इसके बजाय कि हम आपस में ही बैठ के किसी विषय पे चर्चा करें और निंदा आदि कार्य में लग जाए। क्योंकि भगवान को सबसे दुख या पीड़ा अगर कुछ देता है तो वो है कि हम अपने मर्यादा के बाहर जाकर कुछ विषयों पे चर्चा करने लगते हैं और प्रजल्प करते हैं, और उसके कारण अपने ही भक्ति में बहुत बड़ी बाधा को खड़ा कर देते हैं। तो इसीलिए हालांकि लक्ष्मण और कौशल्या ये तो बहुत महान व्यक्ति है, मगर वो अपने बर्ताव से यहाँ पे ये सिखा रहे हैं कि चाहे आपको भगवान के प्रति बहुत आसक्ति है, मगर वो आसक्ति केवल भावनावश नहीं होनी चाहिए। भगवान की क्या इच्छा है, ये जो भगवान कह रहे हैं वो सुन के समझनी चाहिए और उसे पालन करना चाहिए। आगे बहुत अच्छा वर्णन आता है कि फिर भी लक्ष्मण सुनते नहीं है, उसके बाद भी लक्ष्मण सुनते नहीं है और भी बहुत कुछ तर्क वितर्क करते हैं, और फिर भगवान कहते कि नहीं ये तो दैव है, उसको भी नहीं स्वीकारते। बाद में भगवान बोलते दुख छोड़िए और सुनिए, मुझे वन में जाना है, तब शांत हो जाते हैं। इस प्रकार से तो मैं आप सभी भक्तों के चरणों में प्रार्थना और आशीर्वाद की कामना करता हूं कि आप मेरे ऊपर कृपा आशीर्वाद बना के रखिए कि जो कुछ चर्चा करने का मैं प्रयास कर रहा हूं वो केवल चर्चा मेरे मनोरंजन के लिए ना रह के भगवान की प्रसन्नता, आप सभी की प्रसन्नता के लिए रहे, और इस चर्चा को मैं अपने जीवन में उतारने के लिए अथक प्रयत्न करूं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंद। एक सूचना है, श्रीमान बुद्धिमंत प्रभु जो परम सुंदर प्रभु जी के पिताजी है, उन्होंने बहुत ही विशेष अवसर पर जो कल था वसंत पंचमी और बहुत सारे आचार्यों के आविर्भाव और तिरोभाव दिन भी थे, मुझे याद है कम से कम श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का तिरोभाव था, तो उन्होंने कल अपना शरीर छोड़ा है। और अगर आप जानते नहीं होंगे कि ये प्रभु जी कौन है तो बड़ा आसान है उनको जानना कि रोज तुलसी आरती में आप जब प्रदक्षिणा करते थे तो आपने देखा होगा कि आपको वो नरसिंह तेल लगाते थे। तो उन्होंने कल अपना शरीर छोड़ा है, उन्होंने सभी भक्तों को नरसिंह तेल का बहुत सुंदर सेवा किया, चरणामृत सेवा किया और लड्डू सेवा किया। तो हम सभी भक्तों को यही प्रार्थना करते हैं कि श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रमाई, श्री श्री गौर नीताय, श्री बालाजी भगवान और श्रील प्रभुपाद जी के चरणों में उनके लिए हम प्रार्थना अर्पित।